ज्ञानं जनशला च चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो यं प्राप्तजन्तमनुते समपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिना तवैवास्मि न जीवाविषया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां चरणं सिते भक्त्या विहीनाय पराधनस्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणम् बड़ी खुशी की बात है कि मैं ठीक समय पर गुरु पूर्णिमा से पहले आज के दिन मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। पाश्चात्य देशों में, विश्व में, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, चारों तरफ में मैं गया। लोगों ने हमारे भारतीय संस्कृति, ज्ञान, तत्व ज्ञान और भक्ति की बातें बड़े प्रेम से सुना। लोगों के आग्रह से ही मैं गया था। मैं तो और भी बहुत आग्रह कर रहे थे। मैंने कहा जी गुरु पूर्णिमा से पहले हमको जरूर हर हालत में पहुंचना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी और जैसे तैसे मैं वहां से आया। आज शयन एकादशी है, भारतवर्ष में इसका बहुत महत्व है। आज से चतुर्मास्य व्रत आरंभ होता है। कल द्वादशी होगी, कल भी कुछ आरंभ करेंगे और कुछ आज से आरंभ कर दिए, और अधिकांश लोग पूर्णिमा से आरंभ करेंगे। पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक चार महीना, जो आज से आरंभ करेंगे शयन एकादशी से, वे उत्थान एकादशी चार महीने का व्रत करेंगे, और पांच दिन भीष्म पंचक का लगा लें, वो पूर्णिमा को ही वो समाप्त करेंगे। तो कोई आज से करे या कल से करे या पूर्णिमा से करे, पूर्णिमा को ही हम लोग व्रत समाप्त करेंगे। और हम साधु संन्यासी ब्रह्मचारी और हम लोग का अनुगत जितने गृहस्थ वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, वो सब पूर्णिमा से आरंभ करें, और कुछ लोग यदि चाहें तो एकादशी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यदि मनुष्य जीवन को सफल करना है, यदि जीवन को सफल करना है, पशुओं की भांति क्या हो गया, की भांति जीवन की बात नहीं बिताना है, तो चार महीने का समय नियम से बिताओ। भले ही 12 महीने, 4 महीने, 8 महीने तक जैसे तैसे गवाओ, किंतु 4 महीने में नियम श्रृंखला के साथ में। इसमें कुछ बाहरी कुछ नियम है और कुछ आंतरिक नियम है। आंतरिक नियम है, उन नियमों को पालन करना है जिसमें हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगे, ऐसे कामों को करो जिसमें चित्त हमारा भगवान के चरणों में लगे। जगत में जितने सगे संबंधी पति स्त्री पुत्र परिवार देखते हो, कुछ दिनों के लिए ही है संबंध, कुछ दिनों के लिए, और वो भी स्वार्थ भरा पड़ा है। आप लोग देखते होंगे या देखते होंगे, कुछ दिनों के लिए स्वार्थ से भरा, बिना स्वार्थ का संसार ये नहीं चलता। भक्त लोग ही एकमात्र ऐसे हैं जो निस्वार्थ रह सकते हैं। तो इस जीवन में 4 महीने का ऐसा व्रत करो जिसमें चित्त भगवान के चरण में रहे, जहाँ भागवत की कथा होती हो, जहाँ ठाकुर जी का मंदिर हो, कोई तीर्थ हो, ऐसे स्थानों में जाना चाहिए। विशेष करके वहाँ पर हरि कथा सुननी चाहिए। नियमित रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। जो पूजा नहीं कर पाते हैं वे अंततः हरिनाम से जरूर करें। हरिनाम से बढ़ करके कलयुग में कोई साधन भजन नहीं है। कलयुग केवल हरे नाम ही बोलो। जो कुछ है हरिनाम में आ जाए, और हरिनाम में भी बहुत से नाम हैं। आजकल मथुरा में बड़े जोर से देवी जागरण इत्यादि की बात चल, आप लोग खबरदार उसमें भाग मत लें यदि कल्याण कर। जो देवी और शंकर इस जगत में जिनको हम जागरण करते हैं, अरे वो तो वृंदावन में बैठकर के गोपी भाव धारण करके वहां पर बैठे हैं, और ये कंकाली इत्यादि जी सीमा से उस पार रहती हैं, वो कृष्ण के निकट भी नहीं जा सकती। इस बात में भी विश्वास रखो, राधा जी की कृष्ण की सेवा करने से हमारी जितनी भी जो कुछ है आकांक्षा, जो कुछ लाभ है, सब उनके भजन से ही हो जाए, उनके नाम कीर्तन से हो जाए। एक एकादशी का पालन करके उसमें हरि नाम करें, यदि सब कुछ व्रतों का फल उसमें मिल जाएगा। उसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जो कुछ है, और किसी की करने की जरूरत नहीं। अरे मुक्ति तो वृंदावन में जेवर बढ़ती है, जेवर जानती है ना, जेवर बढ़ती है, और यहाँ पर पानी भरने के लिए भी उसको मुक्ति को कोई नहीं लगाता है, ऐसी वृंदावन की धूम है। तो यदि राधा कृष्ण का भजन आप लोग करेंगे, ऐसा करेंगे कि 12वें मास में हम भारत में विशेष करके ये 4 महीने भगवान के हरि कथा सुनने में, भगवान का नाम कीर्तन करने में, उनकी आरती उतारने में, नहीं उतार सकती तो यहाँ मंदिर में आ जाए, जहाँ भी आपके आस पास में मंदिर हो। कुछ कुछ महीने में, पहले महीने में साग मैंने पत्ता वाला जो साग होता है ना, जैसे पालन साग है और हरे पत्तों का, ये नहीं खाएंगे, उसमें कीड़े भरे रहते हैं, इन्हें नहीं खाना चाहिए। दूसरे महीने में दही, दही का वर्जन होना चाहिए, दही को दही नहीं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, भागने के महीने में मत लेना। और आठवें महीने में दूध नहीं लेना। यदि दूध लेना ही है तो विशेष उपयोग लगा करके उसमें तुलसी का पत्ता दे करके, और विशेष रूप में उसको देना, ठाकुर जी को भोग दे करके थोड़ा सा लेना, विशेष स्थिति। और अंतिम महीने में, कार्तिक के महीने में सरसों का तेल है, उड़द की दाल है, ये सब चीजें न ले। विशेष करके 4 महीने में गाजर, प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, मसूर दाल, घिया, बैंगन, परवल, उसका बैठो बैठो मैं ले लेता बैठ। तो ये सब चीजें थोड़ा सा तपस्या है, इसमें कुछ चीज ऐसे हैं जो सौ की हैं, और कुछ चीजें उसमें कुछ दूषित हो जाता है, जैसे लौकी है, परवल है, ये सब जरा स्वादिष्ट चीजें हैं, इनको छोड़ना चाहिए। कुछ जीवन में कुछ छोड़ना चाहिए भगवान के लिए, और कुछ नहीं छोड़ सकती हैं तो चार महीने में जिन जिन चीजों को बतलाया गया है इन सबको छोड़ना चाहिए। और विशेष करके पलंग के ऊपर में, मोटे गद्दे के ऊपर में न सोया जाए, विशेष करके कार्तिक महीने में जरूर एक महीना छोड़ो। सोने के थाल में, चांदी के थाल में या कांसे के बर्तन में मत खाओ। आजकल स्टेनलेस चला है, भले ही उसमें ले लो कोई बात नहीं है, पत्तल सबसे अच्छा है, किंतु आजकल तो मुश्किल है। तो जहां तक हो सके सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, सूरज से एक उदित होने से एक घंटा 36 मिनट पहले जरूर उठ जाओ, और उसी समय में उठ करके हाथ मुंह धो करके भगवान का कीर्तन करो, स्नान करो, यमुना जी या जिस अच्छा पानी है उसमें स्नान करो, तीर्थ में स्नान करो, और भगवान का नाम करो। भगवान के नाम करने में जिन्होंने गुरु जी ने जो मंत्र बतलाया है, और हरिनाम हरे कृष्ण बतलाया, उसका विधिवत नियम के अनुसार में उसको पालन करो। जिन्होंने अभी तक गुरु से कोई मंत्र नहीं लिया उनको लेना चाहिए, और नहीं तो यहां तहां से जैसे तैसे भांग से तेरी खीर को रगड़ दी, ये सब कीर्तन से कुछ लाभ नहीं होगा। भगवान का नाम दो प्रकार का होता है, एक पैया होता है, एक पुष्ट होता है। आ रहा है समझ में? पैया और पुष्ट जी, धान के धान में चावल न हो, केवल धान सा दिखता है, उसको क्या कहते हैं? भूसा। दूसरी चीज, इधर में धान ही शायद नहीं होता है, धान होता है, कुछ धान होते हैं जिनमें चावल के दाने नहीं होते, ऊपर से धान ही जैसा दिखता है। आगरे बंगाल में आगड़ा थागड़ा टुगड़ा कहते हैं यहाँ नहीं। और जिसमें कुछ दाने होते हैं गुरु के द्वारा, जो कि भजन परायण है, तत्वज्ञानी है, और जिसको पैसे के प्रति, संसार के किसी भी चीज के प्रति लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं जिसकी हो, और भगवान के तत्व में निपुण हो, हमारे सारे संदेहों को दूर कर सकते हैं। और जिनके देखने से ही भगवान का नाम आता है, कृष्ण के प्रति भक्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को गुरु बना कर उसे हरिनाम मंत्र लेकर के कुछ कुछ भजन करो। जब तक कि भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं होगा, तब तक अनाप शनाप ऐसे तैसे कामों से भजन नहीं होता। सवेरे में एक महिला गई स्नान करने यमुना, यमुना से स्नान करके लोटे में पानी ले लिया और फूल ले लिए और कुछ धागे ले लिए, और वहीं से विश्राम घाट में जितने मंदिर हैं, जम से लेकर के जितने भी मंदिर हैं उनमें पानी देते हुए आए, शंकर जी में चढ़ाया, जगधात्री जी में, कंकाली जी ने कहा, आंवला का पेड़ मिल गया उसमें भी सूता लपेट दिया, आम का पेड़ मिल गया वहाँ, पीपल का पेड़ वहाँ मिल गया, वहाँ पर पत्थर रखा उसको भी पानी दे दिया, है ना। देवी के जागरण में चले गए, रात भर जागा, और फिर दूसरी जगह में हरिनाम हो रहा है वहाँ पर पहुँच गए, कहीं शंकर जी का हो रहा है। ये नहीं, सतभातारी से नहीं होता। सतभातारी जानते हैं, एक शब्द होता है, एक लड़की को, स्त्री को सात पति है, ऐसे नहीं, एक में निष्ठा, राधा कृष्ण में निष्ठा रखो, जो ब्रज में यहाँ मथुरा में जन्म लिया, मथुरा में रह करके जो लोग राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, कृष्ण का भजन नहीं करते, अब उनको धिक्कार कहूं या क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आता। उनको ही अपना सर्वस्व बनाओ, उनको अपना बेटा बनाओ, उनका अपना सखा बनाओ, उनका अपना पति बनाओ, उनको अपना प्रियतम बनाओ, जो संसार में सबसे जो उससे संबंध है उसे लगाओ और उसका भजन करो। यदि उसको कहो हे कृष्ण मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, एक बार यदि कहेगा कोई तो कृष्ण उसे अंगीकार कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो उसके ऊपर में न्योछावर कर दिया, जिस जो कहने वाला था ये लिखा, उन्होंने कहा उस गांव का कुत्ता भी हमारा प्यारा है जिसने ये लिखा, कृष्ण मोरे प्रणाम, यही बात के बिकाइन उतार वंश, मैं उसके वंश में बिक गया। उस गांव का स्त्री पुरुष बाल बच्चा कुत्ता बिल्ली भेड़ सभी हमारे प्यारे हैं। तो मथुरा नगरी ऐसी है, यहाँ पर तुम लोग भगवान का भजन करो, राधा कृष्ण का भजन करो। यहाँ पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर, जन्म स्थान का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है, सब जगह मंदिर है। तुम्हारे मोहल्ले में कहीं नहीं है तो यहाँ आ जाना और उनका आरती दर्शन करो, भगवान का नाम करो, कीर्तन करो। इस प्रकार से अपने जीवन को ये चार महीने तक बचाओ, धूम्रपान मत करना, चाय मत लेना, चाय दवा है, खांसी और बीमारी में ये होती है। और यदि स्वस्थ अवस्था में खाओगे तो उसमें 20 पॉइजन है, प्याज लहसुन में 21 प्रकार के पॉइजन है, 20 है, उसी से कैंसर और टीबी इत्यादि रोग होते हैं। आजकल इन्वेंशन किया है अमेरिका इत्यादि देश, इसलिए ये सबसे बचो, ये चार महीना तो बचो। और घर वालों को भी कहना जैसे आप मत लीजिए, मैं नहीं बना सकती, और आप लोग कहेंगे जी मैं बाजार से ये चीज़ें नहीं ला सकता। चार महीने इस तरह से रह करके भगवान का भजन, सवेरे सवेरे यदि नहीं होता अपने घर में ठाकुर जी हैं जरूर उनकी आरती करना। ये चार महीने नहीं हो सके तो अंततः कार्तिक वाला महीने में ठाकुर जी को प्रदीप देना, ठाकुर जी को तुलसी जी का। इस प्रकार से चार महीने तक अपना बिताना जिससे कृष्ण में अधिकतर रुचि हो, स्वाभाविक रुचि। विशेष करके मैं विदेशों में जहां जहां गया, सैकड़ों लोग मृदंग करताल शंख झांझर लेकर जामर तक करके जहां पर विमान उतरता था एयरपोर्ट में सब लोग आते और नृत्य करते थे, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित रह जाते। कहीं कहीं तो गाय का दूध, घी, मधु, बूरा, पंचामृत वाला सभी हमारे चरण को धोने के लिए लाते। मैं मना करते गैया का दूध, गैया का घी, गैया का दही हमारे चरण में नहीं जाता, उनको मना कर देता। और बड़े कीर्तन करते हुए आरती उतारते और हमारी भारतीय जो पद्धति है उसे सीख करके भागवत सुनते नियम के अनुसार। मैं कहता जी भाई हरिनाम के लिए, कहते मैं जी हरिनाम तो तब दूंगा यदि ये सब कटा करके चोटी रख करके आएगा, गले में माला देगा, एक मिनट के अंदर में सब उतार करके पहुंच जाए। प्याज लहसुन नहीं खाएगा तो कभी नहीं खाएंगे। चाय गुरु जी चाय पिए, खबरदार मत पीना, चाय कॉफी इत्यादि सब कुछ, मांस मछली तो ये चित्त बात ही क्या। जहाँ जाता 300-400 लोग, सारी व्यवस्था करते, रसोई बनाते वैष्णवी, ठाकुर जी का भोग लगता, सवेरे शाम आरती होती, प्रवचन में सब लोग आते और प्रवचन के बाद में प्रश्न करते, सब लोग जितनी स्त्रियाँ थी तिलक लगा करके आती और गले में माला दे करके, ऐसा कोई छोटी छोटी बड़ी सुंदरी मालूम होता है जैसे आकाश से परियों की भांति उतर करके आई है और पढ़ी लिखी। आज हमने कुछ भाषण दिया उसके ऊपर में नाटक दिखला दिया अभिनय करके, लड़कियां सब भी पढ़ी लिखी, जो बोलता था एक दिन के अंदर में कंप्यूटर में लेकर के एक्सपर्ट और दूसरे दिन एक किताब निकाल देती और चारों तरफ में वितरण कर दिया। कृष्ण के नाम पर न जाने क्या करते थे, मेरी समझ में नहीं आया। लोगों का उत्साह देकर के मैं वहां था, जब वहां से चलता था तो सभी रोने लगते, सभी स्त्री पुरुष बूढ़े बाल बच्चे सभी। यहाँ तो हमारी दो तक चार लड़कियां हैं या पुरुष लोग है रोते हैं, और वहां देखा सब लड़के लड़कियां सभी लोग रोने लगते थे। एक देश से जब दूसरे देश जाता था तो यहाँ तक कि विमान बंदर पर एयरपोर्ट पर कैसे कैसे लोग रोते थे और क्या क्या करते थे, मैं क्या बताऊं। जहां जहां गया राधा कृष्ण की कथाओं को सुनाया, सुनते सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते, प्रश्न करते थे कितने बाहर के लोग सब आते थे, अरे राधा कृष्ण तो बेकार की चीज है, उनका प्रेम हमारे यहाँ तो रोज पतियों को ग्रहण करते हैं रोज छोड़ देते हैं, ये तो फैशन है, जैसे सिगरेट करके फेंक देते हैं ना पी करके, वैसे आज विवाह किया कल संबंध खत्म, तीसरा हो गया चौथा पांचवा छठवा हो गया। उन देशों में यह सब सुन करके लोग अच्छी तरह से भारतीय रीति परंपरा को अनुपालन करते हैं। एकादशी कहा, हाँ एक बात तो निश्चित कहना हमको चाहिए, उनका देख करके मैं हैरान हो गया। एकादशी वहां पर पड़ी हॉलैंड में या कहां फ्रांस में पेरिस में एकादशी हुई। एकादशी के दिन देखा जब 10-15-20 आदमी निर्जल उपवास कर रहे हैं, बस ये तो अद्भुत। हमारे ब्रह्मचारियों को ब्रह्म मुहूर्त में ही भूख लग जाती है, आज एकादशी सुनेंगे कि कल एकादशी है तो आज इसे तैयारी में लग जाते हैं। वहां पर देखा भाई छोटी छोटी लड़कियां थी, ब्रह्मचारी लोग गृहस्थ लोग, जिससे पूछूं आज आप कुछ फल वल लेंगे, आज हम लोग नहीं चला रहे, मैंने तुम लोग ठंड
हो, सुना है कि उस देश में ज्यादा ठंड है तो ठंड में तो प्यास नहीं लगता है, गर्मी में तो पैदल ही प्यास लगता।
जो लोग गाय का मांस खाने वाले, दिन रात शराब पीने वाले, भोगों में लगे रहने वाले, जिनको हजारों नहीं लाखों रुपयों की महीने में इनकम है और जिनका घर इतना आलीशान है और वो लोग निर्जला कर रहे हैं, इसमें बहादुरी है। अच्छा पूछ लो, अभी 2-3 आदमी यहाँ के हैं, अच्छा उससे पूछो जिसे निर्जला किया है कि कुछ लिया है। हाउ यू हैव मेंटेन ऑब्जर्व एकादशी, हैव यू टेकन वाटर, देख लो ना ऐसे देखो, बचपन से ही ऐसा कर रही, बतलाओ तो। हमारे यहाँ हो सकता है कि एक दो है जो निर्जला किया होगा, जो ऐसी लपलपा रही वो लोग किया होगा और बाकी नहीं किया। इधर इधर पुरुषों के हाथ तरफ उठाओ तो जो कौन कौन निर्जला है, बात भी आ गई, तो धर्म कर्म की क्या जरूरत है,
हमें बाकी जरूरत नहीं है।
अरे सुनो, नंद बाबा जी यशोदा जी एकादशी किया, उनसे भी बड़े बड़े बाकी है। नंद बाबा ने एकादशी किया, जो कहते हैं वो मूर्ख हैं। नंद बाबा को यशोदा जी को और कृष्ण को भी नहीं, कृष्ण ने भी एकादशी किया यहाँ पर निर्जला नहीं, इसी मथुरा में, सुनो इसी मथुरा में अम्बरीश महाराज जी थे,
अम्बरीश महाराज
कहाँ के थे, मथुरा के, कहाँ के, वृंदावन के, हाँ वृंदावन, और वृंदावन का आदमी जब एकादशी, जिनको धर्म कर्म से नाता नहीं है वे लोग ऐसा कहते हैं, तुम लोग इनकी बात को मत मान। निर्जला न हो सके कोई बात नहीं, किंतु दोपहर तक निर्जला जरूर रहो, दोपहर के अंदर में कुछ मत खाओ, यदि हो सके तो 3-4 बजे तक पानी मत लो। अंततः यदि एक आरती करना है निर्जला पूरा कर लो तो ठीक है, और नहीं हो सकता है तो दोपहर तक या 3 बजे तक तुम लोग भर लो पानी और। और इसके बाद में यदि नहीं रह जाता है उस शरबत है, उस फल का जूस है, आलू उबाल करके ले लिया, गरीब आदमी है, शकरकंद कुछ ले लिया, पानी फल का आटा का पकौड़ी बना लो, या कुछ जैसे जीवन के निर्वाह के लिए थोड़ा सा फल का जो दिन में खाते हैं हम लोग उसका चौथाई भाग कम अधिक से अधिक लो, तब से एकाध और हरिनाम करो, दिन में सोया नहीं जाए, ये सब नियमों का पालन करते हुए एकादशी करेंगे तो आपको हाथों हाथ फल मिलेगा। और यदि दिन में 5 बार खाओ, 10 बार जूस पियो, 10 बार पानी पियो और खूब आराम से सो जाओ, आज एकादशी है, ये एकादशी सब नहीं है। अंततः हम लोगों को कुछ कष्ट करना चाहिए तो कृष्ण देखेंगे। हाँ, जिसको कोई रोग है, अस्वस्थ है, उनके लिए कुछ छूट है तभी फल लेंगे, अन्न जातीय कोई चीज न लेंगे। इस तरह से एकादशी का किया गया। एक रानी ने, रानी बन करके मोहिनी ने, एक लड़की ने, ब्रह्मा जी ने लड़की बनाया और वो आकर के एक राजा को कहा, थोड़ा सा संक्षेप में बतला दूं। एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, उनका नाम था रुक्मांगद और उनका बेटे का नाम धर्मांगद। राजा ऐसा था कि सभी लोग अपने राज्य भर में ढिढोरा पिटवा देता, कल एकादशी है, आज एक बार लेना है, नियम आज से ही ले लेना है, आज एक बार खाना है, कल व्रत रहना है। लोग एकादशी का निर्जला उपवास करेंगे, जो नहीं रह सकते उनके लिए फलाहार इत्यादि, और दूसरे दिन फिर पारण करके सफेद सबके लिए। जो हम ऐसा नहीं पालन करेगा हमारे राज्य में नहीं रहेगा, इसलिए डर के, यदि होगा तो हम यहां से निकाल देंगे, उसको दंड देंगे, इसलिए लोग डर के मारे भी कुछ लोग नहीं करते। कुछ दिनों के बाद राजा जब बूढ़ा हो गया तो वान प्रस्थ में 50 वर्ष के बाद में जंगल में चला गया भजन करने के लिए, अपना राज्य बेटे को दे दिया। वहां पर भजन करने का अब राजा का लड़का और भी बड़ा थे और एकादशी का पालन करता, सब जगह भागवत का प्रचार कराता, भक्ति का पालन करता। किसी कारण से जम महाराज ने देखा कि अब लोग हमारे जमराजपुरी में कोई नहीं आता, क्यों, तो उसने अपना लेखा जोखा और अपना पद ले जाकर के रिजाइन दिया कि अब कोई हमारे यहाँ आते नहीं है, इसे इसकी जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ भी आते चले आए। ब्रह्मा जी ने अपने मन से बड़ी सुंदरी 16 वर्ष की एक सुंदरी कन्या पैदा की, मन से कहा और होगी। उसने कहा कि पिताजी मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा नाम मोहिनी है, तुम राजा को जाकर के ऐसा मोहित करो जो उनके राज्य में कोई एकादशी मत करे, अरे ये तो चुटकी बजाते हुए कर दो। ठीक है, वो चली गई, जहाँ राजा तपस्या कर रहा था वहां पर पहुंची और उनके सामने और धनग्न अवस्था में उनके सामने में इधर उधर कुछ काम करने लगी, राजा उसे देख करके मुग्ध हो गया। लड़की धीरे धीरे उनके समीप आई, राजा ने कहा आप कौन हैं राजकुमारी? तो मैं यहाँ के एक राजा की लड़की हूँ, किस लिए वन में अकेली घूमती हो? तो मैं पति खोजने के लिए निकली हूँ, अभी तक हमारा कोई पति हमारा जैसा सुंदर नहीं मिला, किंतु आज आपको देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं आपसे शादी करनी चाहती। राजा ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा जैसे तो चलो तो फिर हम अपने राज्य में लौट जाएंगे और तुमको अपनी रानी बना करके रखेंगे। उसने अपने बेटे को खबर दी कि मैं राज्य में लौट रहा हूँ। बेटा बड़ा अच्छा उसने कहा अपनी मैया को जो मैया दे, राजा एक और कन्या से विवाह करना चाहता है, उसको साथ ला रहा है, हम उसका नौकर बन करके उसकी सेवा करेंगे, तुम उसकी नौकरानी बन करके सेवा करना, तो ये मत समझना कि मैं राज माता हूँ या राज रानी हूँ, उनको खुश करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे पिता हैं तुम्हारे, वो पति हैं। ठीक, उनको बड़े शान से उनको ले आई, ले आए ये लोग, राजा वो राजा राजगद्दी पे बैठा, उससे उसने शादी कर ली वो नई कन्या से। एक दिन में ढिढोरा बज रहा था और हो रहा था कि एकादशी कल है, आज से तैयारी करो, कल सभी लोग एकादशी करेंगे, नहीं तो हम अपने राज्य में नहीं रहने देंगे। रानी ने सुन करके कहा, नई रानी ने, अरे ये एकादशी क्या, राजा के लिए एकादशी की जरूरत नहीं है, एकादशी तो बूढ़िया जिनके पति मर गए हैं, घर में कोई काम नहीं है, इधर सुनो, जिनके पति मर गए हैं, विधवाएं हो गई हैं, वो करेंगी, और पुरुष में जो बड़े बूढ़े हो गए हैं, संसार को अब छोड़ चुके हैं एक तरह से, वो लोग करेंगे, और राजा के लिए क्षत्रियों के लिए एकादशी व्रत नहीं है, ब्राह्मणों को बुलवाया जाए, उनसे पूछा जाए। उसने ब्राह्मणों को बुला करके रुपए पैसे खूब दे दिए, ये तुम लोग झूठ बोल देना, उन्होंने राज्यसभा में आकर के झूठ बोला, नहीं राजा नहीं करेगा और केवल विधवा बूढ़िया करेंगी और कोई नहीं करेगा। राजा ने कहा, ये जैसे भी हो मैं नहीं मानता, ब्राह्मणों की बात नहीं मानता, ये बड़े झूठे लबार होते हैं, थोड़े से रुपए मिलने में और अपनी बात को उलाट देते हैं, उनको दक्षिणा चाहिए, गर्हित से गर्हित लज्जित से लज्जित काम को भी वो कर सकते, मैं इनकी बात नहीं मानता, हम तो करेंगे एकादशी, तो मैं आप चली जा रही हूँ तो आप तुम निकल जाओ जाओ। जब देखा निकल करके जाने लगी तो बड़ी रानी जो थी उसने, बहन तुम कहाँ जा रही हो, अब तो राजा ने कहा मेरी बात नहीं मानेगी, मैंने कहा था यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे साथ रहूंगी, अब नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ, हमारी बात नहीं मानते, मैं कहते हैं ये एकादशी मत करो, वो कहते हैं ये करेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, जाओ उनको तुम एकादशी करने दो, इसके बदले में जो कुछ मांगेगी हम दिलवा देंगे। अच्छा तो ठीक है मैं रहती हूँ किंतु हमारी बात माननी, क्या तुम्हारा जो लड़का है युवराज, राजा और तुम दोनों मिलकर के उसका गला काट करके हमको दे दो, तब तुम एकादशी कर सकते, अन्यथा नहीं, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। रानी ने कहा ठीक है तुम्हारी बात मैंने मान ली, अब मैं राजा से जा सकता। राजा ने कहा मैं नहीं मानता, उसको घर से निकाले दो, जाने दो। रानी ने बहुत समझाया, अच्छा तो ठीक है। एकादशी के दिन उस लड़के को काटने के लिए दोनों मैया और बाप दोनों मिल करके तैयार हुए, और ज्यों ही उसका गला काटने के लिए गए त्यों ही भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलो भगवान कृष्ण चंद्र की, एकदम प्रकट हो गए, बोले जी बर मांगो राजा से और रानी से, तुम दोनों को बैकुंठ की अभिगति देता हूं, और ये तुम्हारा बेटा है, ये यहाँ का राजा रहेगा, और ये जो मोहिनी है ये ब्रह्मा की कन्या है, परीक्षा लेने के लिए आई थी। राजा रानी ने बर मांगा, जी ऐसा आप फिर से किसी को परीक्षा ना मिल जाए ऐसी कड़ी, जरा विधि में उसको इतनी कड़ी परीक्षा कलयुग में विशेष करके नहीं हुई। मोहिनी बड़ी लज्जित हुई, उन्होंने हमने बहुत ये खराब काम किया, हमको भी कुछ बर मिलना चाहिए। कहा जैसे क्या बर चाहती हो, तो एकादशी के दिन जो लोग अन्न खाएंगे, अन्न में जितने प्रकार के पाप हैं सब उस दिन एकादशी के अंदर रहेंगे, और जो खाएगा वो सारा उसका उसको पाप लगे, और उनका जो कुछ पुण्य है वो हमको मिल जाए। कहा ठीक है, एकादशी के दिन में जितना पुण्य आप लोगों का है, यदि एकादशी के दिन में अन्न खाना खाएंगे तो उसका सारा पुण्य वो ले लेगी एकादशी वो मोहिनी, और जितना प्रकार का पाप का फल है एकादशी के दिन में लगता है। सब पापों का मूल फल क्या है, जो लोग एकादशी व्रत इत्यादि नहीं करते, जन्माष्टमी नहीं करते, इनको क्या होता है, उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे वो जीवन मरण के चक्कर से निकल करके सदा के लिए भगवान की सेवा में, विशेषकर सबसे ऊंची जो ब्रज की सेवा है, ब्रजवासियों की, कृष्ण की जो गोलोक वृंदावन में सेवा है, निश्चित रूप में उसे लाभ करें। आज विदेशों में भी बहुत से लोग एकादशी व्रत करते हैं, उसका फल एकदम देखते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत जरूर है। शास्त्र में और भी कितनी बातें हैं, तो ऐसा काम करना चाहिए एकादशी के दिन में कुछ चंद्र के साथ में पृथ्वी का संबंध होता है, तो उस दिन हमारे शरीर में जितने भी रोग रहेंगे वो बढ़ जाएंगे एकादशी में यदि अन्न खाया, जरूर बढ़ेंगे। जितने आदमी अधिकांश मरते हैं वो अमावस्या से पूर्णिमा, एकादशी से पूर्णिमा अथवा एकादशी से अमावस्या के बीच में ही मरते हैं और रात में मरेंगे। यदि एकादशी के दिन हमने अन्न नहीं खाया तो इसका प्रभाव रोगों पर नहीं पड़ता, रोकथाम हो जाएगी। दूसरी बात, सप्ताह में एक दिन की लोगों की छुट्टी होती है, जो छुट्टी होने से दूसरे दिन काम अच्छी तरह से करेंगे, तो हमारे पेट में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हजम ठीक से करते हैं, उनको एक दिन का विश्राम 7-15 दिन में जरूर देना चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर सकते हैं, पाकस्थली खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, जल्दी से मरेंगे। दूसरी बात, एकादशी भगवान का रूप है, जगत के कल्याण के लिए एकादशी भगवान ही हुए हैं। उस दिन जो एकादशी का व्रत करेगा, थोड़ा सा भी हरि नाम किया, सिद्ध हो में गया, भगवान का नाम स्मरण किया, भागवत सुना, भगवान की लीला कथा महिमा श्रवण किया, एकादशी का फल ऐसा होता है कि भगवान के चरण में उसे प्रेम हो जाता है, उसके अनर्थ दूर हो जाते हैं, उसके दुख दूर हो जाते हैं। यही मथुरा में एक गैया थी, हमारे यहाँ एक झाझन देवी आती हैं, अभी भी जीवित हैं, कहीं बैठी हूँ, तो वो यहाँ आती थी। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात, एक गाय अत्यंत फूल गई थी, उसका सांस भी नहीं निकलता था और बच्ची भी नहीं थी, मर भी नहीं थी, और आंखों से आंसू गिर रहे थे, रास्ते में पड़ी हुई थी। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, किंतु कुछ कर नहीं सकते। तो उसने हमसे आकर के कहा, हमने कहा जी मैया तुम एक बात करो, तुमने एकादशी किया है कहाँ, एक एकादशी का फल उस गैया को जाकर के कान में अर्पण कर दे, और यमुना जी का पानी या गंगा जी का पानी उसके मुख में दे दो, और एक तुलसी, या तो वो बच जाएगी और नहीं तो वो चली जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया, गंगा जल लिया या यमुना जल, तुलसी का पत्ता लिया, उसके कान में कहा गैया गो माता, हम तुमको अपनी एक निर्जला एकादशी का फल तुमको हम अर्पण करते हैं। इतना कहते ही बस गैया ने उसकी तरफ में देखा, आंख से आंसू आए और बस अंतिम श्वास लिया। कितने बात आपको सुनाऊं, शास्त्रों में इसके भूरी भूरी प्रमाण है, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरि नाम करो, तुम लोगों का जीवन, सब लोगों का जीवन हो जाएगा। आत्मविश्वास के साथ में सदगुरु धारण करके कुछ कुछ भगवान का भजन करो, सभी लोग विशेष करके मथुरापुरी में जो जन्म लिया है, या बाहर से ब्याह करने के बाद में आई हैं, या काम करने के लिए सर्विस से यहाँ पर आए हुए हैं, किसी प्रकार से मथुरापुरी में ब्रज में कहीं भी हैं, उनको जरूर भगवान का भजन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसमें कल्याण है। इसलिए आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं, आप एक कीर्तन कीजिए। हमारे भारत पर से जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वैष्णव